الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بس كلاس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا احمد برکات مثالی ماں سے مثالی عورت میں سے پڑھتے ہیں. جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے مثالی ماں کا، اور اس میں جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے بلوغت کی عمر کے بچوں کی تربیت. کہ ماں اپنے بچوں کی جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ جائیں تو کیسے تربیت کرے. اس میں ہم بہت سارے پوائنٹس پڑھ چکے ہیں. پچھلا پوائنٹ پڑھا تھا بلکہ ہاں، کیونکہ اصل میں جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ جوانی کی عمر میں بچے چیزوں کو بہت جلدی سیکھتے ہیں، اور ان کی حساسیت نشہ آور چیزوں کے لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں جو ان کی حساسیت کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. ٹین ایجرز آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ اچھے خاصے جذباتی ہوتے ہیں، چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ ساجز نے اپنی مثال بھی دے کے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس عمر کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہی چلنے کا کی عادت تھی کہ کرتے کی جیب پھٹ جاتی تھی دروازے کے ہینڈل میں پھنس کر کے. تو عمر کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر ہم حیران ہوتے تھے اب کیوں نہیں پھٹتی، تو پھر سمجھ میں آیا کہ وہ عمر ایسی تھی کہ اس کے اندر بڑی تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتے تھے. اب جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وجہ سے اب نہیں پھٹتی. اٹکتی تو ابھی بھی ہیں لیکن پھٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جوانی پہ جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ بچے سگریٹ پیتے ہیں یا نشے کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اور برے کاموں کی عادت ان میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتی. حضرت نے ہر چیز ہر جگہ بیان نہیں کرنی ہوتی، تو اس وجہ سے ہم تب تشریحاً بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں آ جاتی بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، آئس کا نشہ کرنے والوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آئس کا نشہ شروع کر دیتے ہیں. آئس جو ہے وہ آج کے دور کی سب سے زیادہ مشہور نشہ ہے، جو کہ ہے بھی انگریزی میں. پہلے تو چرس کا جو لفظ تھا نا، یہ بڑا اس سے جو ہے وہ خالی وہ لوگ ذہن میں آتے تھے جو بڑے غریب اور بڑے illiterate قسم کے لوگ ہیں، اور کیا کہتے ہیں برج کے نیچے جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی حیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وہ چرس کا نشہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب آئس جو ہے نا یہ بڑا ماڈرن قسم کا انگریز ہے نا، لائک ایز اے ڈائریکٹ فرام یورپ امریکہ. تو اس وجہ سے نا آئس کا نام سن کر کے جو ہے نا وہ کسی کو وہ کراہیت نہیں آتی، عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے. حالانکہ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آئس جو ہے یہ چرس سے بھی کئی گنا زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور یہ آپ کے ہائی سکولز کے اندر اور کالج وغیرہ کے اندر. حتیٰ کہ ابھی مجھے کسی نے بتایا، دیکھا تو نہیں میں نے لیکن کسی نے بتایا کہ کراچی میں جو ہے وہ بڑا خطرناک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، تو ایک لڑکی نے جو اپنی گاڑی سے لوگوں کو مارا تو وہ لڑکی جو ہے وہ آئس کے نشے میں تھی. بہت ہی کوئی امیر کبیر قسم کے خاندان کی وہ بچی تھی، اس نے جو ہے نا وہ آئس کا نشہ کر کے جو ہے وہ گاڑی چلا رہی تھی، اور پتہ نہیں پھر اس نے کیا 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 کس کس کو قتل کیا اپنی گاڑی کے ذریعے سے. تو یہ امیروں کی جو ہے نا وہ چرس اور افیون اور ہیروئن ہے. تو اب یہ کہاں سے آتی ہے نا، یہ ایسے تو نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے وہ آپ نے آئس کا نشہ شروع کر دیا. آپ ایسے ماحول میں گئے تھے، یا آپ کو آپ کے والدین، آپ کے جو محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ جو 100% مخلص ہوتے ہیں والدین، وہ ماشاءاللہ آپ کو اپنی محبت کے اندر ایسی ایسی جگہوں پہ لے کر کے جاتے ہیں یا پہنچاتے ہیں کہ جہاں سے پھر آپ آئس کے نشے ہی بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، محبت آخر محبت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، جب یہ اردو زبان میں کہتے ہیں محبت تو اندھی ہوتی ہے نا، محبت تو اندھی ہوتی ہے. جس سے محبت کرتی ہے نا پھر وہ اس کا نہ نفع دیکھتی ہے نہ اس کا نقصان دیکھتی ہے، کیونکہ محبت تو اندھی ہوتی ہے نا. چلیں، تو ایسے بچوں کی تربیت کے لیے پھر چند بہت اہم باتیں ہیں. ان میں سے پہلی بات ہم نے نہیں دو دو باتیں پڑھ لی تھیں. پہلی بات یہ کہ سیٹ کلیئر ڈیفائنڈ رولس اینڈ ویلیوز، ان کے لیے واضح اصول و ضوابط और अकदार मुतय्यन करें। दूसरी बात ये कि बच्चों को वाज़ अंदाज से बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रेड्स यू वांट फ्रॉम देम, आप उनसे किस किस्म के रिजल्ट की तवक्को करती हैं। इसके ऊपर भी बात हो गई थी आखिरी क्लास के अंदर कि ग्रेड्स का मतलब यहाँ पे नेसेसरीली स्कूल के अंदर फर्स्ट आना और सेकंड आना और थर्ड आना, ये ग्रेड्स नेसेसरीली ये मुराद नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस, मेहनत, ठीक है। और उसको जांचने के जो है वो और भी तरीके होते हैं जो कि जिनको भी आप ग्रेड्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल के अंदर जो है ना वो स्टार्स मिलते थे, ब्लू स्टार होता था सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस पे, और फिर येलो स्टार होता था, व्हाइट स्टार होता था, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो बर्तानिया का सूरज गुरूब नहीं होता है, इसकी जो मिसाल आप लोगों को इस आर्टिस्ट ने बताई है कि बर्तानिया का सूरज 1947 में गुरूब कोई नहीं हो गया था, बल्कि अभी भी पूरी आबोताब के साथ दुनिया के अंदर चमक दमक रहा है सल्तनत बर्तानिया का सूरज। तो उसकी क्या मिसाल बताई थी, कैसे कैसे चमक दमक रहा है बर्तानिया का सूरज पूरी आबोताब के साथ पूरी दुनिया के अंदर, कैसे, किसी को याद है कैसे पूरी दुनिया में बर्तानिया का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक और दमक रहा है, 1947 में ये कोई गुरूब नहीं हुआ था, याद है किसी को क्या बताया था? जी, IGSE, IGCSE, ठीक है ना, ये जो कैम्ब्रिज बोर्ड है, ये जो एड एक्सेल का बोर्ड है, ये जो ऑक्सफोर्ड का जो बोर्ड है, राइट, जिसके ओ लेवल्स की स्टडीज होती हैं और इनके एग्जाम्स होते हैं, इनके एजुकेशन सिस्टम जो है और इनके जो जो असेसमेंट का सिस्टम जो है, ये पूरी दुनिया में मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है, और आपके हर मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो इससे एफिलिएटेड हैं और इससे जो है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ IGCSE वाले नहीं होते, बल्कि जो आपका आपका यानी जो आगा खान बोर्ड है, और जो है वो आपका जो CBSE बोर्ड है इंडिया के अंदर, और जो पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे बोर्ड्स हैं, तो वहां पर भी इन्हीं की किताबें पढ़ाई जा रही होती, वहाँ भी इन्हीं के ही पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। तो भाई असल में तो जो जो दिलों पे हुक्मरानी होती है, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह जमाना, ठीक है ना। अब अल्लाह वाले तो खैर दिलों को फतह करते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो दिलों को फतह करने से मुराद इनके लिए काफिर के लिए क्या ली जाएगी, जो नफ्स को फतह कर ले, या नफ्स तो पहले ही इनका होता है, तो बहरहाल आपके दिमागों को फतह कर ले, राइट, आपके जहनों को फतह कर ले, वही फातह जमाना, ठीक है ना। तो अब बर्तानिया जो है वो आपके छोटे से मुल्क के अंदर अगर सिमट के बैठा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के जहनों के ऊपर वो राज अभी भी कर रहा है, तो कौन सा सूरज गुरूब हो गया भाई उसका, है ना। तो अब आप बोलते रहे, नारे लगाते रहे, सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया, आपके नारे लगाने से क्या होता है, ठीक है। तो बहरहाल, तो मैं तो कहना ये चाह रहा था कि इवन वो लोग भी जो है ना, वो भी जो है वो बस ज्यादा से ज्यादा ए ग्रेड और ए प्लस बस इतना ही बताते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं बताते, मार्क्स वार्क्स नहीं बताते। बहरहाल, तो अगला पॉइंट है कि फिर उनको ये भी वजाहत से बताएं कि वॉट कैन दे डू एंड वेयर कैन दे गो, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। अंग्रेजी का इस्तेमाल करना या करने की यानी मजबूरी में अंग्रेजी को इस्तेमाल करना, ये भी बर्तानिया के सूरज के ना गुरूब होने की दलालत है, ठीक है ना, कि भाई अल्लाह वाले भी जो है वो अंग्रेजी में जो है वो अपने ही कौम के लोगों को समझाना पड़ता है किसी चीज को, क्योंकि उनको उर्दू ही पूरी नहीं आती, हमें तो उर्दू बोलनी भी सही तरीके से नहीं आती, और जो है वो उर्दू समझ अक्सर लोगों को नहीं आ रही होती, तो अंग्रेजी में सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक दलील ही है ना कि उनका सूरज जो है वो कोई गुरूब नहीं हुआ। बहरहाल, कौन गुरूब करेगा, अल्लाह ही गुरूब करेगा, जब हम अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह ताला फिर उनको गुरूब भी करेगा और हमें तुलू भी करेगा। बहरहाल, तो उनको वजाहत से बताएं कि वॉट कैन दे डू एंड वेयर कैन दे गो, यानी उनकी क्या रिस्ट्रिक्शन हैं, क्या उनकी लिमिटेशन हैं, कहाँ नहीं जाने की इजाजत है और क्या नहीं करने की उनको, यानी क्या कहाँ नहीं जाने की पाबंदी है और क्या नहीं करने की पाबंदी है, ये उसे पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि घर के अंदर जब माहौल बनाते हैं और घर के बाहर भी जो है वो बच्चों को अच्छा माहौल माँ बाप देते हैं, तो फिर ये रूल्स लिख करके लटकाने नहीं पड़ते। ठीक है, ये रूल्स जो है ना, जिस तरह पार्क में आप जाते हैं ना, तो पार्क के अंदर जो है वो रूल्स जो है वो बाकायदा बोर्ड के ऊपर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, या किसी भी जगह पे बोर्ड के ऊपर जो है वो रूल्स लिखे हुए होते हैं या कागज के ऊपर लिख के लटकाए हुए होते हैं। तो घर ऐसा नहीं होता, घर कोई पब्लिक पार्क नहीं है कि जिसके अंदर आप रूल्स लिख करके जो है वो लटकाते फिरें और फिर लोगों को जो है वो बच्चों को पाबंद करें कि जी आपने ये वाले रूल्स फॉलो करने। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है घर का। ठीक है, तो तरीका तो ये है कि आप बच्चों को, क्योंकि बच्चे कहाँ से लेकर के आए, मार्केट से लेकर खरीद के लेकर के आते हैं। बच्चे कहाँ से खरीद के लेके आए थे, सुपरमार्केट से लेकर के आए थे, मॉल से लेकर के आए थे, या ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे amazon.com से। हाँ भाई, मुझे एक 6 साल की बच्ची चाहिए, मुझे 5 साल का जो है वो लड़का चाहिए। नहीं, कहाँ से आए बच्चे, हॉस्पिटल से लेकर के आए थे। ठीक है, तो हॉस्पिटल से भी लेकर के आए थे, तो वो अपना ही था ना, हॉस्पिटल वालों ने तो खाली आपको दे दिया है वो। ठीक है, था तो आपका ही, मार्केट से तो नहीं लेकर के आए। ठीक है, तो अब बच्चा जब आपके हाथ में है, आपकी गोद में है, आपके घर के अंदर है और वहीं पर उसने आंख खोली है। अभी हम बच्चों को जो है वो साइंस पढ़ा रहे थे, क्योंकि आज जो है वो उसने, और कुछ लोगों को जरा मुश्किल भी हो रही है बात हजम करना कि आप साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ये वाली जो साइंस हम पढ़ा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये साइंस जो है वो तौहीद वाली साइंस, तौहीद वाली साइंस। ठीक है, और हमने शुरू में क्लियर कर दिया था कि हम साइंस में जो है ना वो तौहीद की ही बात करेंगे। तो बच्चे की यानी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है ना, वो कुरान मजीद में बिल्कुल उसके साथ जो है वो मैच कर रही होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर समाअत और बसारत दोनों का तذکرہ बहुत सारे मुकामात पे किया है, 125 मुकामात के ऊपर जो है वो सुनने का तذکرہ किया है, और तकरीबन 150 मुकामात के ऊपर जो है वो देखने का तذکرہ किया है, और 38 मुकामात कुरान मजीद के अंदर ऐसे हैं कि जिसके अंदर सुनने और देखने दोनों का एक साथ तذکرہ किया है, एक ही आयत के अंदर समीअ और बसीर। ठीक है, और हत्ता के यानी सुम्मुन उम्युन, अगर सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता तो इनका भी दोनों का एक साथ तذکرہ किया है। ठीक है, तो ये जो बच्चा होता है वो जब दुनिया में आता है ना, तो दुनिया में वो बाहर बाद में आता है, अल्लाह ताला उसकी सुनने की सिफत को पहले बना देते हैं। उसके सुनने की सिफत जो है ना, बच्चा जब 5 महीने की के जो फीटस का न्यू या अनबॉर्न बच्चा, जब 5 महीने का हो, अनबॉर्न बच्चा 5 महीने का, मुझे अगर गलत याद नहीं है तो 5 महीने का ही था शायद, तो उसकी जो सुनने की सिफत होती है वो एक बड़े आदमी की सुनने की सिफत जैसी बन जाती, अडल्ट के लेवल की उसकी हेयरिंग बन जाती। ठीक है ना, अडल्ट लेवल की हेयरिंग उसकी बन जाती। ठीक है, और जब वो दुनिया में आता है तो उसके 3 हफ्ते के बाद उसकी जो है वो, या 3 महीने के बाद लिखा हुआ था, उसकी फिर देखने की सिफत जो है ना वो फिर डेवलप होनी शुरू होती है। यानी वैसे तो डेवलप हो चुकी होती है, अनबॉर्न हालत में उसकी डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन उसके आगे पर्दा होता है, आईलिड्स होती है, इस वजह से वो कुछ देख नहीं सकता है। फिर जब दुनिया में आ जाता है वो बच्चा, बॉर्न हो जाता है, तो फिर उसकी देखने की सिफत जो है ना वो फिर खुलनी शुरू होती है, फिर वो अपनी माँ के चेहरों को पहचानता है, फिर वो दूसरों के चेहरों में तमीज करना सीखता है, फिर उसको कलर्स नजर आने शुरू होते हैं, और ये होता रहता है, होता रहता है, हत्ता के 10 साल की उम्र तक उसकी देखने की सलाहियत जो है वो डेवलप होती रहती है। सुनने की सलाहियत माँ के पेट के अंदर ही डेवलप हो जाती है, जबकि देखने की सलाहियत जो है वो 10 साल की उम्र तक डेवलप होती रहती है। अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत, क्या क्या नेमत दी है हमें सुनने की नेमत। ठीक है ना, और कितनी पहले हमें ये सुनने की नेमत दे दी है, सुनने की नेमत की बात हो रही है। ठीक है, ठीक से देखता है, 2 महीने में उन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये सब कहाँ हो रहा होता है, ये सब कुछ, ये सब का सब कहाँ हो रहा होता है, ये मार्केट में हो रहा होता है, दुकान में हो रहा होता है, शोरूम में हो रहा होता है, या ये माँ के साथ हो रहा होता है सब कुछ, राइट? उसका देखना, उसका सुनना भी माँ के साथ हो रहा होता है, वहीं पे डेवलप हो रहा होता है, उसका देखना भी माँ के साथ डेवलप हो रहा होता है, ठीक है? तो अब यही माँ जो है वो 12 साल की उम्र में उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, तो 12 साल तक उसने क्या किया? 12 साल तक उसने उसको समझाया क्यों नहीं? 12 साल तक उसको उसको उसकी जहन साजी क्यों नहीं करी, राइट? जहन साजी तो अल्लाह ताला ने माँ के हवाले करी थी ना, कान साजी और आंख साजी अल्लाह ताला ने खुद कर दी, वो माँ नहीं करती। बच्चे का जो है वो कान बना रही है, बच्चे के अंदर जो है वो एयर ड्रम्स को बना रही है, और जो है वो कैनाल्स को बना रही है उसके कान के अंदर। अगर माँ के जिम्मे ये काम दे दिया जाता कि तुम बच्चे का कान भी बनाओ, तो फिर क्या होता? मजा आता हमें? फिर आंख बनाने का हक्का जो है ना, वो जिम्मेदारी भी माँ को दे दी जाती है ना। अब आप इसकी आंख बना, ठीक है, तो फिर क्या करती माँ? अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां नहीं दी माँ, एक जिम्मेदारी दी है जहन साजी, ठीक है? तो वो जहन साजी जो है वो हम नहीं कर सकते, और फिर हम जो है वो या तो बच्चे को इल्जाम देते हैं कि ये बात नहीं मानता, और ये ऐसे नहीं करता, और ये वैसे नहीं करता, या ये कि हम दूसरों को इल्जाम देते हैं कि उन्होंने बिगाड़ दिया मेरे बच्चे को, राइट? दूसरों के पेट के अंदर था ये बच्चा, या आपके पेट के अंदर था ये बच्चा, दूसरों की गोद के अंदर ये जो है पल के बड़ा हुआ है, या आपकी गोद के अंदर ये पल के बड़ा हुआ है, ठीक? तो जब माँ इस तरह के काम कर रही होती है ना, तो फिर ये नहीं व्हाट कैन दे डू एंड वेयर कैन दे गो, ठीक है? हाँ, जब नई चीजें सामने आती हैं जो पहले उनके सामने नहीं आई थी, तो उस वक्त माँ को बताना होता है, इसी को तो जहनसाजी कहा जाता है, ठीक है? कि भाई ये जो काम जो आप गैर को करते हुए देखे ना, ना बेटा ये आपने नहीं करना है, आप करना है जो हमने आपको सिखाया है, जो सही बात है, जो हम समझते हैं सही बात है, ये आपने करना है, और जहां हम आपको लेकर के जाते हैं वहां आपने जाना है, उस तरह की जगहों में आपने जाना है। अब जो आगे से जो नई पॉसिबिलिटीज जो गैर लोग आपके सामने कर रहे हैं, नो दिस इज नॉट प्रमिसेबल फॉर यू, ठीक है? यानी इस तरह उसूली बात जो है वो उनको बतानी होती है, वरना आपको लिस्ट डाउन नहीं कर सकते कि आप इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। दुनिया के अंदर यानी अरबों जगह हैं जहां पे कोई कोई जा सकता है, तो अब आप उनको लिस्ट में लिखेंगे क्या कि इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते? अच्छा, अगला पॉइंट है कि उनके रवैयों के बारे में उन्हें बताएं कि वॉट इज एक्सेप्टेबल एंड वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल, कि क्या चीज काबिल कबूल है और क्या चीज काबिल कबूल नहीं है, ठीक है? तो ये जो रवैये हैं ना, रवैयों का मामला ये है कि बहुत सारे रवैये तो माँ खुद ही उनको सिखा रही होती है, ठीक है? तो वो तो जैसे जैसे वो आपकी गोद में पल रहे हैं, आपके घर के अंदर बड़े हो रहे हैं, आपने उनको अच्छे रवैये सिखा दिए, ठीक है? लेकिन कुछ रवैये जो है ना, ये आते हैं जेनेटिक्स के अंदर, जीन्स में आते हैं, ठीक है ना? अब वो बुरा रवैया या तो आपके अंदर था, आपकी जीन से जो है वो उसके अंदर आया है, या उनके बाप की जीन से उसके अंदर आया है, या उनके दादा की, या उनके जो है वो नाना की, या नानी की, दादी की, या पर नानी पर दादी, कहीं से वो आया है, ठीक है? तो अब वो उसके अंदर जेनेटिकली आ गया है बच्चे के अंदर ना, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उधर आपको फिर उस रवैये को फिर आपको सप्रेस करना होता है, उसको फिर आपको डिस्करेज करना, सप्रेस एंड डिस्करेज, ठीक है? क्या मतलब कि उसके उस गलत रवैये को देख करके आप ना तो तालियां बजा सकती हैं कि जो है वो बड़ा, आप जो है वो उसको ऊपर प्रेस कर रही हैं, क्या हो, क्या जबरदस्त काम किया मेरे बच्चे ने, नहीं गलत है, उसको आप इनकरेज नहीं कर सकते, उसको डिस्करेज करना। इस तरीके से फिर वो डिस्करेज करते करते वो रवैया जो है ना वो सप्रेस हो जाता है, वो दब जाता है उसके, और जब कोई रवैया इंसान का दब जाता है ना, तो जेनेटिकली भी वो चेंज हो जाता है, जेनेटिकली भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है? अब वो उसके अंदर उसकी जीन्स में जो है ना, वो अल्लाह ताला उसको मॉडिफाई कर देते हैं, अब वो फिर उसकी औलाद के अंदर वो रवैया नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जेनेटिक्स के अंदर से वो खत्म हो गया, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर गुस्सा आ गया उसके बाप में से आ गया, या उसके किसी और ऊपर के रिश्तेदार में से आ गया, या आपके अंदर से ही आ गया उसके अंदर गुस्सा, ठीक है? क्योंकि आप भी गुस्से में बहुत तेज थे, तो जब उसने गुस्सा कभी दिखाया, तो आप उसको यानी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं है आप, ठीक है? उसको डिस्कर्ज करें। नखरे दिखाना, ठीक है ना, ये जो नखरे, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी वैसे नहीं करूंगा, और ये वो, ये नखरेबाजी, ये भी जो है ना ये काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। नखरे काबिल कबूल नहीं है और गुस्सा जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। और कुछ मिसालें अगर आप भी देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, आदाब के बारे में बताएं कि नरमी को अपनाएं और हमदर्दी करना सीखें। नरमी को अपनाएं यानी दूसरों के लिए जो है वो सख्त रवैया करना, बिल्कुल यानी लचक का ना होना। तो इसको फिर हमारे हजरत ने मिसाली मर्द की जो किताब थी उसके अंदर मिसाली बाप में हमने पढ़ा था कि बच्चों को सिंपथी भी सिखाएं और उससे भी बढ़ करके एम्पथी सिखाएं। एम्पथी, ये भी अंग्रेजी के लफ्ज है, सिंपथी का मतलब वही है किसी के साथ हमदर्दी करना, और एम्पथी का मतलब होता है कि जब किसी को किसी मुश्किल में देखें तो खुद अपने आप को तसव्वुर करें कि अगर मैं उसकी जगह होता तो फिर
हाँ
कितनी जो है वो मीठे बोल की जरूरत पड़ती है, हमदर्दी के बोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है हमदर्दी। हमदर्दी कैसे सीखता है बच्चा, वही बात है कि खाली अल्फाज बोलने से बच्चा हमदर्दी नहीं सीखता, बल्कि हमदर्दी करता हुआ जब अपने माँ बाप को देखता है तब वो हमदर्दी करता सीखता है। और अगर माँ बाप ऐसे हों कि किसी को तकलीफ में देख करके जो है ना वो एकदम ही उनका रवैया बहुत ही यानी स्टोन की तरह से हो, कोल्ड किस्म का रवैया हो, ठीक है, बिल्कुल जैसे कोई परवाह ही नहीं है किसी की मुश्किल को देख करके, तो फिर बच्चे भी यही सीखते हैं कि हाँ भाई ये आपको कोई हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमदर्दी करने की, हमदर्दी का बोल बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसा लोगों का मामला है वैसे ही हो, ठीक है। तो माँ बाप को सिखाने के लिए जो है ना वो खुद हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना होता है, नरमी का रवैया अपनाना होता है, ठीक है। बच्चों में देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए, आगे भी इसकी बात आएगी कि माँ को जो है वो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को वॉच करना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो अपनी जुबान से ऐसे कोई काम करें, बुरे बुरे काम करें, बल्कि उनका जेस्चर कैसा है, ठीक है, उनकी नजरें जो है ना किसी को तकलीफ में देख करके नजरें क्या उस तरफ से फिर जाती हैं, वो अपने काम के अंदर मशगूल होते हैं, जो अपना खेल का मामला है उसके अंदर मशगूल रहते हैं, या उनके ऊपर कोई असर होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को देखना, जुबान से हर चीज का इजहार नहीं होता, ठीक है। जो जो मुरब्बी होता है ना वो बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा उसका फोकस होता है। अच्छा, एक मिनट जरा ब्रेक लेना है, मुझे पॉज करना। तो हमदर्दी करना ये बेसिकली रिएक्टिव इमोशन ही है, ठीक है, कि जब किसी को इंसान देखता है किसी तकलीफ के अंदर तो उसका रिएक्शन जो है ना वो हमदर्दी वाला रिएक्शन हो, उसका रिएक्शन जो है वो बिल्कुल बेएहतनाई वाला और डोंट केयर वाला रिएक्शन ना हो। अच्छा, अगला पॉइंट है कि ऐसे बच्चों को ये जरूर समझाना चाहिए कि हाउ दे हैव टू कीप देयर रूम। हाउ दे हैव टू कीप देयर रूम, यानी बेसिकली अब ये जो है ना वो थोड़ा सा टॉपिक जो जो बजाहिर ऐसा लग रहा था कि सब का सब जो है वो यानी नशावर चीजों से रिलेटेड है, तो वो शुरू के चंद पॉइंट्स थे जो कि बच्चों की हसासियत बढ़ जाती है, वो नशे वगैरह की तरफ जो है वो मायल हो जाते हैं, तो उनके लिए लिखा था ना कि ऐसे बच्चों की तरबियत के लिए चंद बहुत अहम बातें हैं। तो ये उससे रिलेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन वैसे इन जनरल भी बात हो सकती है, आदाब के बारे में बताएं, नरमी को अपनाएं, हमदर्दी को अपनाएं। वैसे एक और बात याद आई कि अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते के दिन जो हमारी यूथ क्लासेस होती हैं तो उनमें जो है वो अब बाकायदा एक सिलसिला चल रहा है, हमारे एक साथी पढ़ा रहे हैं, आओ आदाब सीखें, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना अभी तक तो अल्लाह ताला के आदाब, नबी अलैहिस्सलाम के आदाब, सहाबा कराम के आदाब और कुरान मजीद के आदाब, ये मुकम्मल अभी हुए हैं। लेकिन इसके अंदर फिर आपस में जो बाहमी मुआशरत के आदाब होते हैं, एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ खेल कूद के आदाब, खाने पीने के आदाब और इस तरह की सारी चीज़ें भी जो है वो इंशाल्लाह समझाई जाएंगी। तो अगर आपके लिए मुमकिन हो तो बच्चों को जो है वो उस क्लास को सुनने के ऊपर भी मायल करें। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं कि ऐसे बच्चों को ये जरूर समझाना चाहिए, कि हाउ दे हैव टू कीप देयर रूम। कीप देयर रूम का मतलब क्या होता है कि वो अपने कमरे को साफ और खुशनुमा कैसे रख सकते हैं। उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना चाहिए कि घर का कौन सा काम है जो साथ मिलकर करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि बच्चों को घर के कामों के अंदर इन्वॉल्व रखना। ठीक है, उनको जो काम से बिल्कुल फारिग कर देते हैं ना घर के, और सिर्फ जो है वो मेड के साथ, मेड जो है वो सारे काम कर रही है, नौकर काम कर रहा है, मासी काम कर रही है और बच्चे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बच्चों के साथ कोई हमदर्दी हम नहीं कर रहे होते हैं, हम उनके साथ कोई कोई यानी खैरख्वाही ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि इसका जो है ना फिर बच्चों को बाद में जा करके तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं बनी होती ना काम करने की। ठीक है, तो अब जब वो शादी, बच्ची की शादी होगी या बड़े बच्चे की भी जब शादी होगी, भाई आजकल तो वैसे भी हर जगह जो है वो नौकर वगैरह होते भी नहीं है, तो नौकर हो या ना हो, बहरहाल मिजाज तो ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ हम भी काम कर सकते हैं, काम करने के कदार। ठीक है ना, हत्ता के बाथरूम की सफाई वगैरह, घर की सफाई वगैरह, घर के कामकाज में चले अगर नौकर हैं भी, तो अब ए टू जी सारा काम नौकर से करवाना ये नहीं सही है। ठीक है ना, हफ्ता के हमने देखा है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुख की और बहुत ही अफसोस की बात है कि नौकर फिर जो है ना वो फिर वो शिकायतें करते हैं, नौकर बुराइयां करते हैं ऐसे लोगों की जो कि घर के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा काम उनसे करवाते हैं और खुद जो है वो काम नहीं कर रहे होते हैं और सारा काम जो है वो नौकर से करवा रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो तो छोड़ के ही चले जाते हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो मजबूर होते हैं या जो है वो जरा शरीफ उन नफ्स होते हैं, तो उन बेचारों को जो है ना वो इनकार करना नहीं आता है, तो वो अब मारे बांधे का मजबूरन जो है ना वो सारा काम कर रहे होते हैं जो कि घर वाले उनसे करवा रहे। ठीक है, तो ये बहुत बुरी आदत, ये इंसान को जो है ना वो तकलीफ पहुंचाने वाली बात है और इसका नुकसान जो है वो उनको खुद हो रहा होता है, उनके बच्चों को जो है वो बाद में जा करके होगा। ठीक है, तो ऐसे हाथ पैर जो है ना वो काट के नहीं बैठ जाना चाहिए और बच्चों को नहीं बिठा देना चाहिए। ठीक है, तो इवन जैसे फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर कमरे की जो है वो सफाई नौकर से करवानी, चले जी नौकर जो है ना वो मॉप करेगा आपके घर के अंदर, तो भाई मॉप करने के लिए कमरे की चीजों को उठवाना, ठीक है, ये सर ये नौकर से नहीं करवाए, बल्कि बच्चे ये काम करें ना, कमरे की चीजों को उठा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है नौकर ने मॉप कर दिया था वो कमरे की चीजों को वापस सेट कर रहे हैं। ठीक है, घर की डस्टिंग वगैरह का काम है ये जो है वो बच्चों से करवाना चाहिए, बड़ों को जब वो बड़े थे और बच्चे छोटे थे बहुत, तो उस वक्त तो बड़े करते हैं, लेकिन बच्चों से भी ये काम करवाने चाहिए। ठीक है, तो अब तक याद पड़ता है कि इवन जो ये बरतानवी शहजादे, नहीं है शहजादे अब तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन जब ये थोड़ी कम उम्र के थे तो ये भी जो है ना ये जहां जहां पे इन्होंने अपनी फौजें भेजी हुई है ना वहां 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 बाकायदा इनके शहजादे जाकर के जो है वो फौज के साथ लड़ते बढ़ते थे कि नहीं थे, लेकिन बहरहाल कम से कम उनकी बाकायदा पोस्टिंग होती थी। तो और पुराने जमाने के अंदर भी जो यानी जो शहजादे वगैरह, तो उनको बाकायदा लश्कर के अंदर भेजना, उनकी जो है वो जंगी तरबियत होना उनकी, तो इवन ऐसे लोग जो कि दुनिया के अंदर जो है वो माल पैसा और हीरे जवाहर के अंदर लदे हुए जो लोग होते हैं ना वो भी इस बात को समझते हैं, और जब वो इसको समझना छोड़ देते हैं तो फिर उनके ऊपर जवाल आ जाता है। जैसे आप मुगल बादशाहों के जो है वो आखिरी जो जो जनरेशन थी, तो उनके शहजादों का हाल देखें तो उनके यहाँ जो है वो घोड़सवारी और नेजाबाजी और ये सारी चीजें जो है ना वो सिखाते तो वो फिर भी थे, लेकिन सिर्फ खेल और तफरी के लिए। ठीक है ना, सख्त बनाने के लिए और जो है वो उसके लिए यानी ऐसी मुश्किल हालात के लिए तैयार होने के लिए ये वो नहीं करते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट था कि अगरचे के ये शहजादे हैं लेकिन उनको ये चीजें आनी चाहिए। उसी तरीके से हमारे घरों के अंदर जो शहजादे और शहजादियां पल रहे हैं, तो उनको घर के काम काज, बाहर के काम काज, जो बच्चों बड़े लड़के हैं उनसे जो है वो बाहर के काम काज, जब उनकी ऐसी उम्र हो जाए बाहर जाने के काबिल हो जाए, उनसे बाहर के काम काज करवाना, ठीक है, तो उसका एहतमाम करना चाहिए। बच्चियों को बाहर मत भेजा करें। बच्चियां जो है ना, जब उनके साथ कोई सीन हो जाता है ना, तो वो इतनी खौफजदा होती हैं, क्योंकि उनको खौफ दिलवाते हैं, उनको खौफजदा किया जाता है, तो फिर वो घर में आके बताती नहीं है कि हमारे साथ क्या हो गया, ठीक है ना। तो बच्चियों को मत भेजा करें, और छोटे बच्चों को भी मत भेजा करें, जब उनकी इतनी उम्र हो जाए कि वो बाशऊर हो जाए और अगले बंदे को जो है ना वो सही जवाब देने के काबिल हो जाए, तब उनसे बाहर के काम काज करवाएं। वरना ये जो मार्केट एरिया, पाकिस्तान इंडिया की बात करूं, बाकी जगहों पे तो बहरहाल इतना सेफ तो कोई भी जगह नहीं है अब, लेकिन फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बाहर की जगहों में होता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो बिल्कुल ही गया गुजरा मामला है ना। तो छोटे बच्चों को या बच्चियों को दुकानों में भेज दिया, अब वो पकड़ के ले जाते हैं, बेसमेंट में ले जाते हैं, और फिर वहां पे जो है वो बदकारी करते हैं बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ, ठीक है, और इतना खौफ दिलाते हैं उनको कि वो घर में आकर के किसी को बता भी नहीं सकती है वो बच्ची, पर या इवन बच्चा घर में आके किसी को नहीं बता सकता, ठीक है। तो काम करवाने का ये दूसरी एक्सट्रीम है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो बाहर भेज दिया, ये दूसरी एक्सट्रीम है। नहीं, ना वो एक्सट्रीम के कोई काम नहीं करवा रहे, और ना ये एक्सट्रीम के इतनी छोटी उम्र में और इतनी कमजोरी के साथ जो है ना वो आपने एकदम जो है वो बाहर भेज दिया, दूसरों के साथ के हवाले कर दिया, या नौकरों के साथ जो है वो उनको उठना बैठना जो है वो करना शुरू कर दिया, करवाना शुरू कर दिया। इन दोनों से हट करके दरमियान का रास्ता, ठीक है, जिसके अंदर सेफ्टी का भी एहतमाम हो, उनकी हिफाजत का भी एहतमाम हो, और साथ साथ जो है ना वो उनकी यानी काम काज करने की सिफत भी जो है वो उनके अंदर पैदा हो, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो बनती है खसूसन बच्चियों के मामले में वो क्या होती है, ये आप बता दें। काम काज ना करने की जो सबसे बड़ा बहाना शरीफ घरानों में बनता है वो क्या होता है जी, जिनके पास जो है वो खादम खादमाएं भी नहीं होती, उनके यहाँ कामकाज ना करने का क्या बहाना बनता है जी, पढ़ाई, राइट, ग्रेड्स लेकर के आना है, स्कूल की पढ़ाई करनी है, बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, और ये भी करना है वो भी करना है, ठीक है, तो ये पढ़ाई के बहाने जो है ना फिर वो किसी काबिल नहीं रहती बच्ची, ठीक है। तो बहुत ही यानी बेवकूफ़ी की हरकत होती है, बहुत ही ये यानी आप बेसिकली उनके मुस्तकबिल को और उनकी आदात को, उनकी सफात को जो है ना वो बर्बाद कर रही होती है, चाहे ये दीन की पढ़ाई क्यों ना, ये भी याद रखें। हम तो अब दीन दीन के पिट्टू पिट्टू खेलना शुरू हो गया ना, तो दीन दीन अब जो है वो पढ़ाई, अगर किसी ने दुनिया की पढ़ाई से हटा भी लिया तो वो दीन की पढ़ाई के ऊपर, तो भाई पढ़ाई पढ़ाई होती है, चाहे दुनिया की हो चाहे वो दीन की हो, अगर उसके बहाने जो है ना वो उनको उनकी तरबियत नहीं हो रही है, उनको काम काज करना नहीं आ रहा है, तो ये उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ठीक है। मदरसे के अंदर भी मुमताज लाना जो है ना ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, मदरसे में मुमताज लेकर के आना, और स्कूल के अंदर जो है वो A+ लेकर के आना, ठीक है। उसूल को समझे, उसूल उसूल ये है कि आप यानी इस चीज के पीछे सिफात खराब नहीं कर सकते। चले आगे फरमाते हैं कि कोई ऐसा वक्त हो कि कोई ऐसा वक्त हो कि जिसमें फैमिली के सब मेंबर्स मिलकर खाना खाएं, ये जरूर होना चाहिए ताकि फैमिली के मेंबर्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। तो कम से कम एक खाना ऐसा होना चाहिए जो कि जाहिर सी बात है कि अगर वालिद साहब जो है वो जॉब के अंदर मसरूफ हैं, काम काज में निकले हुए हैं, या वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनका वर्क आवर है, तो वो दिन का खाना जो है ना वो उम्मीद तौर पर ऐसा नहीं हो पाता है, तो रात का खाना इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर, और उसमें फिर यानी कम्युनिकेशन वगैरह की भी इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अब मिलके तो खा रहे हैं लेकिन हर बंदा अपने फोन के अंदर लगा हुआ है और बस जो है वो किसी और से बात कर रहा है, वहाँ पे बात नहीं हो रही, टेबल पर जो लोग बैठे हुए उनसे बात नहीं हो रही।
चादर गरम है।
बिल्कुल बच्चे बलूगत की उम्र के होते हैं एक्सप्रेस लव टू देम, बाबा आपको चाहिए कि वो जुबान सी भी उनको कहें कि हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगर आप नहीं कहेंगे तो वो इस लफ्ज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि उनका कोई क्लास फेलो या कोई और उनको ये अल्फाज कह दे और वो गलत किस्म के ताल्लुक में किसी के साथ जुड़ जाए। अप्रिशिएट व्हेन दे फील कनेक्टेड टू यू, ठीक है, यानी जब वो आपसे लाड प्यार करें तो आप उनकी हौसला अफजाई करें। इस उम्र के बच्चों की खास बात यह होती है कि दे डोंट लाइक टू डिसअपॉइंट पेरेंट्स। बहरहाल एक्सप्रेसिंग द लव, उसके जुबान से कुछ अल्फाज कहने, कोई ऐसा जुमला कह देना, या वैसे जो है वो ऐसा एहसास दिलाना कि हमें आपसे मोहब्बत है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट है कि इस उम्र के बच्चों की खास बात ये होती है कि दे डोंट लाइक टू डिसअपॉइंट पेरेंट्स, यानी उनको फेल होने का गम नहीं होता, उनको गम होता है कि माँ बाप मायूस हो। ठीक है, क्योंकि माँ बाप के साथ, अगर माँ बाप उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं तो प्यार मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता हो जाता है कि फिर बच्चा जो है ना अपने माँ बाप को मायूस नहीं देखना चाहता। तो इसलिए माँ बाप उनके इस जज्बे की कदर करें कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उनको समझाएं कि आपने कोशिश की थी, इस वजह से हम आपसे बहुत खुश हैं, अब अगली दफा आपने अपने ग्रेड्स यानी कारकर्दगी को बेहतर करना है। ठीक है, ग्रेड्स को बेहतर करने का कुदरतन हजरत ने खुद यहाँ पे जो है ना वो, या जिन्होंने किताब कंपाइल करी है उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया कारकर्दगी। ठीक है, ग्रेड्स का मतलब जो है वो एग्जैक्टली नंबर्स नहीं होते बल्कि ओवरऑल कारकर्दगी, और कारकर्दगी को जज करना जो है ना ये माँ बाप का की जिम्मेदारी है कि वो कारकर्दगी को जज करें। इसी वजह से जो थोड़े से एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं तो वहां पर सिर्फ आपके एग्जाम पेपर का जो मार्क्स, जो आपका रिजल्ट शीट होती है उसमें आपने सवाल के जवाब कैसे दिए हैं, तो उनके ऊपर जो मार्किंग होती है ना, सिर्फ उसके ऊपर कारकर्दगी को जज नहीं किया जाता, बल्कि आपने भी सुना होगा और आपके साथ ऐसा भी शायद आपके साथ भी हुआ हो कि वो और भी सारे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर, किसी बच्चे को यानी उसको एसेस करने के लिए, किसी बच्चे की कारकर्दगी को, उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए सिर्फ जो आंसर शीट होती है उसके अंदर जो उसने जवाब दिए होते हैं ना उनकी बेसिस पे उसको एसेस नहीं करते, बल्कि उसकी ओवरऑल जो जो क्लास पार्टिसिपेशन है, जो उसकी जो है वो अटेंडेंस है, जो उसका जो गेटअप है, जो उसका जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों के अपने अपने बाकायदा वेटेज रखते हैं उन सारी चीजों। ठीक है, तो स्कूल वालों की तो मजबूरी है ना, जब स्कूल सिस्टम में तो फिर आपके यानी कई सौ स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब कई सौ स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर उनको तो उस सिस्टम की तो ये मजबूरी है कि उनको तो फिर नंबर्स देने पड़ते हैं ना लोगों को। ठीक है ना भाई, आप कैसे एसेस करेंगे, आप किसी अननोन बंदे को कैसे बताएंगे कि भाई इस बच्चे की क्या कारकर्दगी है, या आप अपने स्कूल को कैसे जो है वो ग्रेड करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इस वजह से नंबर्स उनकी मजबूरी होते हैं, स्कूल सिस्टम की मजबूरी। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल सिस्टम हैज टू डील विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स या समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। क्या माँ बाप के घर के अंदर भी क्या हंड्रेड्स ऑफ बच्चे होते हैं आपके, हैं इतने हैं, किसी की औलाद पठान भी होंगे तो भी जो है वो 25-30 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो आपके चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-11 बच्चे हैं, तो भाई ये तो एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है ना, और ज्यादातर तो आजकल वैसे भी दो तीन पर ही गुजारा हो रहा होता है। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए तो फिर माँ बाप जो है वो हर चीज को सामने रखे ना, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनके जेस्चर्स कैसे हैं, उनके जो है वो एटीट्यूड कैसा है, उनके इन सारी चीज़ों को देख करके फिर वो अपने बच्चे की कारकर्दगी को मेजर करें और उसकी हौसला अफजाई भी करें, गलत चीज़ों के अंदर उसकी हौसला अफजाई ना करें, लेकिन अगर उसने मेहनत करी है, उसने कोशिश करी है, तो इसकी हौसला अफजाई करें। आप यकीन करें यानी बच्चा जो है ना वो जब उसको उसने अगर कोई सही काम किया हो और माँ बाप जो है ना वो उसको डिसरिगार्ड कर दें, अगर ठीक है ना कि उसने मेहनत करी थी लेकिन उसको डिसरिगार्ड कर दें, क्यों उसके, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं आए, उसके स्कूल के अंदर मार्क्स नहीं आए, उसके जो है वो ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो बच्चा जो है ना वो अच्छा खासा टूट जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको नुकसान होता है, और फिर उससे फिर जो असल दुश्मन होते हैं उनको फिर मौका मिल जाता है उसके दिल में वसवसे डालने का वगैरह। तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। फिर वही बात जो कि पिछली क्लास के अंदर हमने यहाँ से ही रेफर करी थी कि ट्रीट देम एज ए यूनिक इंडिविजुअल, डोंट कंपेयर देम विद एनीवन। तो इसके बारे में पिछली क्लास में बात हो चुकी थी, तो बस वही है कि ग्रेड सिस्टम्स को कुछ जगहों पर तो बाकायदा ग्रेड सिस्टम्स को खत्म ही कर दिया गया इसी वजह से। ठीक है कि भाई जब देखते हैं ना कि इल्म हासिल करने के ऊपर फोकस खत्म हो गया है और बस ग्रेड्स के ऊपर फोकस बना हुआ है, तो फिर कुछ लोग जो कि जरा सिंसियर होते हैं, जरा थोड़ा सा अपने यानी मामूल से हट करके उनके अंदर हिम्मत होती है जाने की, तो फिर ऐसे लोग जो है ना वो ग्रेड सिस्टम को खत्म ही कर देते हैं। बाकायदा चंद 2-3 साल पहले सिंगापुर की खबर आई थी, सिंगापुर के उन्होंने अपने स्कूल से जो है ना वो ग्रेडिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया। और उसकी वजह जो है वो यही बता रहे थे आपकी उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी कि ये इल्म हासिल करने के ऊपर फोकस ही खत्म होता जा रहा है और बस ग्रेड सिस्टम्स की वजह से जो है ना वो एक चूहे बिल्ली की दौड़ लगी हुई है। हत्ता कि इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे बच्चों में सुइसाइड्स होने शुरू हो गए, खुदकुशियां, और ये एक नोन फैक्ट था। बल्कि मैंने उसके उस न्यूज के ऊपर जो कमेंट्स पढ़े उसमें किसी ने लिखा था कि सिंगापुर के अंदर टीन सुइसाइड्स जो है ना ये इनकी सबसे ज्यादा रेशियो टीन सुइसाइड्स है, और उसकी वजह यही बताते हैं कि जिनके ग्रेड्स नहीं आ रहे होते हैं तो फिर वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं, इतने जो है वो यानी मायूस हो जाते हैं कि वो होता है कि अपनी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। ये ग्रेडिंग का जो मार्क्स लाना है और ग्रेडिंग कराने का जो मामला है ना ये इसके नुकसान आते हैं। अब आप देख लें आप में जिनके बच्चे यानी ओ लेवल्स के अंदर हो, IGCSE के एग्जाम दे रहे हो, या आप तसव्वुर करें कि जो यानी एग्जाम की तैयारी होती है, ठीक है, जो स्कूल वाले करवाएं या जो है वो प्राइवेट ट्यूशन वाले करवाएं, ये क्या क्या तैयारी होती है, सारा का सारा जो है पास पेपर्स की बुनियाद, पास पेपर्स की बुनियाद, तो पास पेपर्स की बुनियाद पे जो जो तालीम हो रही होती है तो उसमें क्या क्या होता है, सारा ताल्लुक जो है वो एग्जाम के साथ है, सारा ताल्लुक जो है वो ग्रेड्स के साथ है। ठीक है, तो पूरा सिस्टम ही इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, गेस पेपर्स, तो पास पेपर्स, तो फिर उसके बाद जब एग्जाम एक्चुअली आ रहा होता है तो फिर जो है वो फिर आखिरी चीज क्या होती है, आखिरी चीज होती है पेपर आउट। ठीक है, कि पेपर को जो है ना वो आउट करवा दिया और फिर जो है वो उसको सॉल्व करवा करके फिर उसके बाद अंदर जा करके जो है एग्जाम दे दिया। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा तालीमी निज़ाम इस वक्त दुनिया के अंदर। बाकी जो रही सही कसर है वो फिर आपके AI ने पूरी कर दी है कि बहुत सारे असाइनमेंट्स और बहुत सारी चीजें जो है ना वो AI सॉफ्टवेयर के जरिए से फिर बच्चे कर रहे होते हैं, और जो उन्होंने खुद से रिसर्च करनी होती है, मुताला करना होता है, उसकी कोई जरूरत ही है कोई नहीं। बहरहाल तो ये पॉइंट बस पढ़ के हम खत्म कर, बल्कि बहुत लंबा पॉइंट है तो पढ़ लेते हैं। ये वो गलती है जो अक्सर माँ बाप करते हैं कि टीनेजर बच्चों का मवाजना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे हो, फुला तो ऐसा है, फुला तो ऐसा है, ये चीज़ बच्चे को उल्टा गुस्सा दिला रही होती है और वो इंतकाम पसंद बन रहा होता है। इंतकाम पसंद मतलब वो रिबेल कर रहा होता है, वो बगावत के ऊपर उतर रहा होता है, इसलिए ऐसे बच्चों के सामने दूसरों की मिसालें नहीं देनी चाहिए। स्पेंड टाइम लिसनिंग टू देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, उनके साथ वक्त गुजारें और समझने की कोशिश करें कि वो सोचते क्या हैं और उनके एहसास क्या हैं। ठीक है, कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो जहाँ चार खंडों के ऊपर पूछ लें, वरना फिर बाकी इंशाल्लाह की क्लास में। जी अगर है तो चलें फिर यहाँ पे सफा नंबर 130 के ऊपर आज की क्लास हम रोकते हैं। दुआ करता हूँ सबको बात समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।